नमस्कार श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओ, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब प्रभु की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके हमारे उन भाई बहनों का जो पहली बार इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मुझे आशा है कि आज की इस अध्ययन के द्वारा आप अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखेंगे एवं आशीषों को प्राप्त करेंगे। तो आइए आज हम अध्ययन करने से पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा आप हमें सिखाते, समझाते और सुधारते हैं। आज जब हम आपके वचन का मनन चिंतन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि जो कुछ भी आज हम सीखें, सुने, प्रभु हमारे जीवन में लाभकारी हो सके। हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। विशेष करके उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना है जो बीमार हैं, निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, अपने जीवन में अकेलापन का सामना कर रहे हैं। आप उनकी सुधि लें ताकि वे इस बात को जान सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनके साथ में हैं, क्योंकि आपने उन्हें रचा है। उनके भाई बहन, माता पिता उन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। हाँ प्रभु, इस वचन के द्वारा आप उनसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और रोमियो की पत्री उसके अध्याय 7 से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। इस अध्ययन का विषय है उद्धार प्राप्त आत्मा की वेड़ियां, उद्धार प्राप्त आत्मा के संघर्ष। मेरे मित्रों, पवित्रीकरण का विषय अध्याय 5 के उत्तर भाग में ही आरंभ हो गया था, जहां संभावित पवित्रीकरण का विषय था, अर्थात मसीह की मृत्यु में और पुनरुत्थान में अभिन्न अंग होना। हमें इस पर निर्भर करना है, स्वयं को उसके वश में करना है और उसमें भरोसा रखना है कि वह हमारे द्वारा मसीही जीवन जिए। अब इस अध्याय में दो विषय हैं, उद्धार प्राप्त आत्मा की वेड़ियां और उद्धार प्राप्त आत्मा के संघर्ष। व्यवस्था विश्वासी के जीवन में पवित्रीकरण नहीं ला सकती है, वह केवल बेड़ियां डाल सकती है। न ही विश्वासी नए स्वभाव की कामना लेकर अपने जीवन को पवित्र बना सकता है। केवल यह कहना कि आप मसीह के लिए जीना चाहते हैं, तो इससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपको इस बोध के साथ प्रभु के वश में होना है कि आप जीवित मसीह के साथ एक हैं। मेरे मित्रों, इस अध्याय के महत्व पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता है। इसी बात पर डॉक्टर ग्रिफाय थॉमस कहते हैं, डॉक्टर अलेक्जेंडर व्हाइट ने एक बार कहा कि जब भी रोमियो की पत्री पर कोई नई पुस्तक आती है और प्रकाशक उसे उनके पास अवलोकन हेतु भेजते हैं, तब वह तुरंत ही उस पुस्तक में अध्याय 7 पर की गई टिप्पणी देखते हैं और उस महत्वपूर्ण अध्याय पर दिए गए विचार के आधार पर वह उस संपूर्ण पुस्तक का स्थान निर्धारित करते हैं। डॉक्टर फ्रेडरिक गेटेट ने कहा, 100 में से एक ही बार ऐसा होगा कि पाठक प्रेरित पौलुस को तर्कपूर्ण न पाए कि वह उसके विचार को समझ ना पा रहा हो। मेरे मित्रों, पौलुस निश्चय ही इस संपूर्ण अध्याय में तर्क प्रस्तुत करता है। जब मैं अपनी युवावस्था में था, तब एक ग्रामीणशील बाइबल शिक्षक, जो असंख्य जनों के लिए आशीष का कारण हुआ, मेरे लिए बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। वह पास्टर नहीं था। उसने कहा कि हमें अध्याय 7 में अचल नहीं होना है, हमें उसका भ्रमण करते रहना है। मैंने वर्षों तक यह सिद्धांत सिखाया है, परंतु अब वर्षों बाद पास्टर या सेवकाई के बाद में इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं कि हमें रोमियो अध्याय 7 को अनदेखा कभी नहीं करना चाहिए। मेरे मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि अनेक पास्टर यह कामना करते हैं कि उनकी कलीसियाओं के सदस्य रोमियो के पत्री अध्याय 7 का अध्ययन करें, क्योंकि अध्याय 7 पर मनन करने वाला मनुष्य अध्याय 8 भी पढ़ेगा। मैं यह मानता हूं कि अध्याय 8 का अध्ययन अध्याय 7 से आरंभ होता है। हम में से अधिकांश जन इसी प्रकार अध्ययन करते हैं, परंतु आपको उसके आसपास चक्कर नहीं काटना है, क्योंकि ऐसा करने से आप सीधे मार्ग पर नहीं होंगे। मुझे एक झनकार स्मरण आती है, स्वर्गीय विहार संतों के साथ प्रेम में, ओह यह तो महिमा है, परंतु पृथ्वी पर आवास संतों के साथ यह एक अलग कहानी है। मेरे मित्रों, उद्धार प्राप्त आत्मा के संघर्ष में विश्वासी तिनके का सहारा खोजता है। कभी कभी यह तिनका मूसा की व्यवस्था है और तब उसे यह बोध होता है कि यह उसने तिनका नहीं सीमेंट का बोरा पकड़ लिया है, जो जीवन रक्षक नहीं है। यह तो उसे नीचे गहरे में खींच रहा है और वह जी नहीं पा रहा है। परिणाम स्वरूप असंख्य पवित्र जन सामान्य मसीह जीवन जीने में हार जाते हैं। मेरे मित्रों, अनेक पवित्र जन दुखद, निकृष्ट, निकम्मा, भावुक जीवन के निम्न स्तर पर भी संतुष्ट रहते हैं। इस अध्याय में व्यक्त सामर्थ्यहीन पवित्रीकरण दर्शाता है कि हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है। वर्षों पूर्व दैनिक समाचार पत्र में एक व्यंग चित्र दिया गया था। युग युग में यह विचार प्रचलित था, स्वयं बनाओ, स्वयं सुधारो। उस व्यंग चित्र में एक दीनहीन मनुष्य स्वयं करे दुकान में आया। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थी और एक हाथ गलपट्टी में था। वह दुकानदार से पूछता है कि क्या उनके पास स्वयं ही किया हुआ बिगाड़े का सामान है। आज हम विश्वासियों को यह सीखने की आवश्यकता है कि हम स्वयं ही नहीं कर सकते हैं, हम मसीही जीवन स्वयं नहीं जी सकते हैं और सच तो यह है कि हमें स्वयं किया बिगाड़े के समान की आवश्यकता है। हमें अपना जीवन परमेश्वर के आत्मा को सौंप देना है, उसके वश में होना है और उसे हमारे लिए वह करने दे जो हम स्वयं नहीं कर सकते हैं। मेरे मित्रों, मूसा की व्यवस्था वह है जिसके द्वारा अधिकांश मसीही विश्वासी मसीही जीवन पाने का प्रयास करते हैं। अब पौलुस दिखाएगा कि मूसा की व्यवस्था का विश्वासी पर अधिकार नहीं है, और सच तो यह है कि व्यवस्था ने मनुष्य को मृत्यु के लिए निर्धारित कर दिया है। वह दोषारोपण की सेवा थी। देखिए दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय उसके 9 पद में, आप उस न्यायाधीश के पास जाकर जीवन का मार्ग नहीं खोजते जिसने आपको मृत्यु दंड दिया है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं उद्धार प्राप्त आत्मा की बेड़ियां। रोमियो के पत्र 7 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। ध्यान दे, क्या तुम नहीं जानते, यह अभिव्यक्ति पौलुस की पत्रियों में बार बार आती है। इसे सकारात्मक रूप में रखा जाए तो इस प्रकार होगी, तुम ऐसे अज्ञानी हो। जब पौलुस कहता है भाइयों क्या तुम नहीं जानते, तो निश्चय जानिए कि वे विश्वासी अनभिज्ञ थे। मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं, यहां पर व्यवस्था परमेश्वर की प्रजा के लिए सहस्त्र वर्षों से परीक्षा का कारण रही थी, विशेष करके उस स्थान में जो व्यवस्था पालन के लिए अनुकूल एवं लचीला था। व्यवस्था मनुष्यों को ही नहीं देश को भी दी गई थी, परंतु इसराइल व्यवस्था पालन से चूक गया। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 53 पद में स्तेफनुस ने कहा था, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई परंतु उसका पालन नहीं किया। पत्रस ने उसे जुआ कहा है, प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 10 पद में, ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादे उठा सके थे और ना हम उठा सकते हैं। अब पौलुस एक उदाहरण देगा जो मेरे विचार में एक महान उदाहरण है। दुर्भाग्य से हम इसमें से विवाह और तलाक के लिए नियम निर्धारण करते हैं, परंतु पौलुस वस्तुतः न तो विवाह न ही तलाक के विषय में कुछ कह रहा है। वह तो एक स्थापित नियम का संदर्भ देते हुए कह रहा है। यह नियम था कि पत्नी पति के साथ तब तक बंधी है जब तक कि वह जीवित है, उसकी मृत्यु के बाद वह स्वतंत्र है। रोमियो के पत्र 7 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। मेरे मित्रों, पत्नी पति के जीवित रहने तक उससे बंधी रहेगी, परंतु पति के मरने के बाद वह पति के नियम से मुक्त है। दूसरे शब्दों में, पति की मृत्यु विवाह की वाचा को समाप्त कर देती है, अब वह उसके साथ विवाहित संबंध में नहीं है। रोमियो के पत्र 7 अध्याय के 3 पद में लिखा है, सो यदि पति के जीते जीवा किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह विचारणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी वह विचारणी न ठहरेगी। मेरे मित्रों, कुछ लोगों का मानना है कि तलाक और विवाह इस पद के आधार पर किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं है। हमें इसकी भूमिका को पूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है। यदि पति या पत्नी विवाह के प्रति अनिष्ट हो तो मूसा की व्यवस्था के अधीन क्या होना चाहिए। मान ले कि किसी स्त्री का विवाह एक प्रेम के ढोंगी से करती है और वह उसके साथ वफादार नहीं है, तब क्या होगा? वह पत्थरवाह किया जाएगा। अब जब वह व्यक्ति पत्थरों के ढेर के नीचे दबा है तब वह स्त्री किसी और के साथ निश्चय ही विवाह कर सकती है। आज हम मूसा की व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते हैं, हम बेवफा पति को पत्थरवाह नहीं कर सकते। यहाँ पौलुस तलाक और पुनर्विवाह के निर्देश नहीं दे रहा है। मेरे मित्रों, वह कहीं और यह काम करेगा। पौलुस जो कहना चाहता है वह यह है कि जब पति मर जाए तब वह फिर से अविवाहित है। मेरे विचार में यह सभ्य समाज का एक वैश्विक नियम है। कुछ जनजातियों में पत्नी को पति के साथ ही मार डाला जाता था, परंतु सभ्य समाज इस प्रथा का पालन नहीं करता है। पौलुस पति पत्नी के लिए नियमों में वृद्धि करता है। वह पति के जीवित रहने और पति के मर जाने के बाद पत्नी की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है। हम रोमियो की पत्री 7:4 में पढ़ते हैं, सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। दूसरे शब्दों में, इसी प्रकार मेरे भाइयों, तुम भी व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, अर्थात पुराने स्वभाव के। व्यवस्था तुम्हारे निमित्त मसीह की देह के द्वारा मार दी गई है कि तुम किसी और से विवाह कर लो, उससे जो मृतकों में से जी उठा है, जिससे कि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। मेरे प्रियो, पत्नी मसीह में विश्वास का प्रतीक है, दूसरा पति मसीह का प्रतीक है। हम उसके साथ संबंध बना चुके हैं, अब यह पहला पति कौन है? आइए अब हम कुछ महान लोगों की बातें सुने। डॉक्टर विलियम सेंडे उसे मन फिराव से पूर्व की दशा कहते हैं। पहला पति मसीह को ग्रहण करने से पूर्व की दशा है। डॉक्टर स्टिफलर कहते हैं कि पहला पति है क्रूसित मसीह, और डॉक्टर विलियम आर न्यूवेल कहते हैं कि पहला पति आदम और उसमें हमारी पूर्व दशा है। मेरे अपने विचार में आदम अधिक उत्तम व्याख्या है, क्योंकि अध्याय 5 में आदम और मसीह दो मूल पुरुषों का उल्लेख किया गया है। हमने वहां पहला आदम और अंतिम आदम देखे हैं। हम अपने पुराने स्वभाव से आदम के साथ जुड़े हुए हैं। व्यवस्था दी गई थी कि इस पुराने आदम के स्वभाव को वश में कर लें, परंतु वह सफल नहीं हुई क्योंकि शरीर दुर्बल था। व्यवस्था वास्तव में इसराइलियों के गले में चक्की का पाट थी। वह उसे उभारने की अपेक्षा 1500 वर्षों तक दासत्व में जोते रही। उसकी अनिवार्यताओं की पूर्ति करना आवश्यक था, परंतु मनुष्य उसे पूरा नहीं कर पाया। मेरे मित्रों, वह वास्तव में दोषारोपण की सेवा थी। यदि अन्य जाति मसीह में विश्वास लाने के बाद व्यवस्था के अनुसार चलेगा तो उसके लिए कोई आशा नहीं है। पौलुस कहता है कि मसीह की दैहिक मृत्यु हुई और हम मसीह की मृत्यु में उसके साथ एकता बनाते हैं, और अब हम व्यवस्था के लिए मर गए हैं और व्यवस्था हमारे लिए। मेरे मित्रों, यह पहला पति आदम है जिसके साथ अब हमारा संबंध नहीं है। अब हम जीवित मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। हम उसके साथ मर गए और उसके साथ फिर जी उठे हैं। वह दूसरा पति है, जीवित मसीह यीशु, जो फल लाने में हमें क्षमता प्रदान करता है। हम मसीह को अब शरीर के अनुसार नहीं जानते हैं। हम जिससे जुड़े हुए हैं वह पुनर्जीवित मसीह है। व्यवस्था मसीह में नव मानव को नहीं दी गई है। देखो, पुरानी बातें जाती रही है और सब कुछ नया हो गया है। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 5:17 में लिखा है, विश्वासी व्यवस्था के वश में नहीं है, अनुग्रह के अधीन है। जी हाँ, यह धर्मशास्त्र का एक तथ्य है। हे विश्वासियों, विश्वास करो, ऐसा ही है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक अति व्यंग्यात्मक उदाहरण देता हूँ जो मैंने अपने बाइबल अध्ययन के समय में सुना था। एक रूपवान धनवान पुरुष एक सुंदरी से विवाह करके आनंद से रह रहा था। वह अकस्मात ही मर गया। उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ क्योंकि वह उससे बहुत अधिक प्रेम करती थी। उसने एक अति विचित्र काम किया। अपने पति के पार्थिव शरीर पर उसने लेप लगवाकर उसे एक कांच के संदूक में कुर्सी पर बैठाया तथा उस संदूक को अपने घर में ऐसे स्थान पर रख दिया जहां कोई भी प्रवेश करते ही उसे देख पाता। उसके शुभ चिंतकों ने सोचा कि ऐसा काम नहीं चलेगा, अतः उन्होंने उसे भ्रमण करने का परामर्श दिया। अतः वह 2 वर्ष के लिए भ्रमण करने चली गई। इसी बीच उसकी भेंट एक अन्य पुरुष से हुई और उसने उससे विवाह कर लिया। सुहाग रात के लिए वे अपने फार्म हाउस पर आए और पति ने वही किया जो उसे करना था। उसने अपने पत्नी को उठाया और घर में प्रवेश किया। ज्यों ही उसने घर में कदम रखा, त्यों ही उसका सामना उस परिचित देह से हुआ। उसने पूछा कि वह कौन है। वह तो उसके बारे में भूल चुकी थी। उसने बताया कि वह उसका पहला पति है। तब दोनों ने निर्णय लिया कि उसे दफन करने का समय आ गया है, और यही उचित भी था। अब वह दूसरे पुरुष की पत्नी थी, पुराना पुरुष मर चुका था। कभी कभी मैं सोचता हूं कि यह व्यंग्यात्मक कहानी क्या वास्तव में सच थी। यह सच है कि अनेक विश्वासी व्यवस्था को खोद कर निकाल लेते हैं। सच तो यह है कि उन्होंने व्यवस्था को दफन किया ही नहीं था, वे व्यवस्था को कांच के संदूक में रखे हुए हैं। वे पुराने आदम स्वभाव के साथ व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। यह कैसा महान उपहास है। मेरे मित्रों, विश्वासी आज जीवित मसीह से एकता बनाए हुए हैं और मसीही जीवन उसे प्रसन्न करने वाला जीवन है। ओह, यह कैसा महत्वपूर्ण बात है। मैं इस पर अधिक बल नहीं दे सकता। रोमे के पत्र 7:5 में लिखा है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। मेरे मित्रों, इसका सामना करें। क्या आप अपनी क्षमता में व्यवस्था पालन कर सकते हैं? व्यवस्था देह को वश में करने का आवरण थी। देह ने व्यवस्था के अरुचिकर बंधन की अधीनता से विद्रोह किया और उसका उपहास किया। देह में क्षमता नहीं थी, इच्छा नहीं थी कि व्यवस्था के आदेशों का पालन करे। देह ने व्यवस्था के बंधनों को तोड़ दिया और अपरिवर्तनीय दंड अर्थात मृत्यु दंड पाया। हम रोमियों के पत्र 7:6 में पढ़ते हैं, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। मित्रों, ध्यान दीजिए, अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए अर्थात व्यवस्था से मुक्त हो गए या उसका निराकरण हो गया। इस भाग में परस्पर विरोधी शब्दों पर ध्यान दें। पद 4 में मरे हुए और फल लाएं, पद 6 में मर कर और सेवा करते हैं। आज हम सेवा इसलिए नहीं करते कि मुझे यह करना है, परंतु इसलिए कि मैं मसीह को प्रसन्न करने के लिए सेवा करने में आनंदित हूं। विश्वासी स्वतंत्र किया गया है, परंतु प्रेम के कारण वह उद्धारकर्ता को अर्पित है जो वह व्यवस्था के अधीन नहीं कर पाता था। यह पद मैं अपने कॉलेज और बाइबल अध्ययन के समय अपनी बाइबल में लिख करके रखता था। मैं अपनी आत्मा के उद्धार का प्रयास नहीं करता, यह तो मेरे प्रभु ने कर ही दिया है, परंतु दास स्वरूप सेवा करता इस पुत्र के प्रेमाधीन। हम मसीह की सेवा करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21:7 में प्रभु ने शमौन से सीधा पूछा, क्या तुम उससे प्रेम करता है? मेरे मित्रों, यही प्रश्न आपके और मेरे समक्ष है। भटके हुए संसार से परमेश्वर पूछता है, तू मेरे पुत्र के लिए क्या करेगा? वह तेरे लिए मरा है। तथापि विश्वासी से वह पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मसीही जीवन है, मसीह हमारे द्वारा जीवित है। हम स्वयं के प्रयास से या व्यवस्था के द्वारा यह नहीं कर सकते। व्यवस्था में कुछ भी बुराई नहीं है, समस्या हमारे साथ है। हमें यह अंतर्ग्रहण करना है अर्थात मसीह यीशु को अपने जीवन में आने देना है जो मुझे और आपको स्वतंत्र करता है। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको अपने जीवन में झांक करके देखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन मेरे सामने और आपके सामने है। वह मुझसे और आपसे पूछता है, क्या तो मुझसे प्रेम करता है? क्या आप सचमुच में प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ? हाँ प्रभु, मैं आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। या आप अभी भी उन पुरानी बातों पर या व्यवस्था के उन बातों पर उलझे हुए हैं और उसी के द्वारा आप उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं? मेरे मित्र, यदि आज आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चय ही आप एक गलत रास्ते पर हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप इसे छूटकर बाहर आएं। वह आपको स्वतंत्र करना चाहता है। वह आपके जीवन में शांति और आनंद देना चाहता है। वह आपको उद्धार का आनंद देना चाहता है। बस आप उस पर विश्वास करें, उस पर अंतर्ग्रहण करें, इस बात को मान लें कि मसीह आपके लिए मरा और आपके लिए वह जीवित हो उठा है और आप भी उसके साथ मर गए और मसीह में जीवित हैं। आज हमारे बहुत सारे भाई बहन इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और यही कारण है कि वे आज बुराई और बुराई में फंसते चले जा रहे हैं। आज आप कहां पर हैं? आइए आज हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के निकटता में लाएं। उससे कहें, प्रभु मैं आपकी निकटता में जीवन जीना चाहता हूँ। आज तक मैं व्यवस्था की बातों में उलझा रहा, लेकिन मैं उससे बाहर आना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन को आपके लिए अर्पित करता हूँ, अर्पित करती हूँ। प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। मैं पापी हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आप मेरी सहायता कीजिए। जी हाँ, यदि आज आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होते हैं तो निश्चय जाने कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से आपने हमसे फिर से एक बार बातचीत किया है। हमें इस बात का स्मरण दिलाया है कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आपके द्वारा ही हमें उद्धार की प्राप्ति है, ना कि व्यवस्था के पालन करने के द्वारा। प्रभु जी, हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो आज तक अंधेरे में अपने जीवन को जी रहे हैं और इस समय जो पश्चाताप कर रहे हैं, अपने जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन बुराइयों से बाहर आना चाहते हैं, जो समस्या में उलझे हुए हैं उससे बाहर आना चाहते हैं। हमारी विनती है कि आप उनके पापों को क्षमा कीजिए, आप उनके जीवन के उन प्रार्थनाओं का आदर कीजिए, उनके आंसुओं को आप देख रहे हैं, उनकी जरूरतों को आप समझ रहे हैं, आप उनका मार्गदर्शन कीजिए, ताकि इस समय वे जो आपको पुकार रहे हैं, आपके उस उद्धार के आनंद को अनुभव कर सकें। प्रभु यीशु, आप उनके हृदय में आ जाइए, उनके जीवन में अपनी शांति दीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, इस वक्त फिर से हर एक भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। एक एक के जीवन को आशीष दीजिए, ताकि जब हम अगले अध्ययन में मिले तो निश्चय ही आपके आशीषों को अनुभव कर सकें। उनके पत्रों को हम तक पहुंचाने में आप मदद कीजिए, ताकि उन गवाहियों को हम देख सकें और उनके लिए आपके नाम का धन्यवाद देने पाएं। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा निश्चय ही आपने अपने जीवन में प्रभु को पाया है और आशीषों का अनुभव प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
से मारेंगे।